सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत का तीसरा एपिसोड और मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। इस एपिसोड में हम सुनेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जन्म कथा। पिछले एपिसोड में हमने चित्रांगद और विचित्र वीर्य की कथा सुनी थी और जाना था कि कैसे चित्रांगद और विचित्र वीर्य बिना किसी उत्तराधिकारी के ही स्वर्ग लोक को सिधार गए। एक बार फिर हस्तिनापुर का राजपाट संभालने के लिए कोई नहीं था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के चलते राज्य नहीं संभाल सकते थे। ऐसे में राज्य को ध्यान में रखते हुए सत्यवती ने भीष्म को अंबिका और अंबालिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग रहे। भीष्म ने अपनी माता सत्यवती को किसी ब्राह्मण द्वारा पुत्र उत्पन्न करवाने का सुझाव दिया। सत्यवती ने भीष्म को अपने पूर्व काल का रहस्य बताते हुए महर्षि वेद व्यास के बारे में बताया। उन्होंने भीष्म को महर्षि पराशर के साथ हुए समागम से प्राप्त हुए पुत्र वेद व्यास जी को इस कार्य के लिए बुलाने का सुझाव दिया। भीष्म उनके इस सुझाव से बेहद खुश हुए और माता से महर्षि का आवाहन करने के लिए कहा। पुत्र वेद व्यास को याद करते ही वे अपनी माता के समक्ष आकर खड़े हो गए। सत्यवती ने उन्हें सब समझाया और अपनी पुत्र वधुओं के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने के लिए तैयार कर लिया। अब जानते हैं आगे की कथा। व्यास जी ने कहा, माता, विचित्र वीर्य की पत्नियों को मेरे बताए अनुसार 1 साल तक व्रत का पालन करना होगा, तभी मैं उनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ। सत्यवती ने कहा, पुत्र, कोई ऐसा उपाय करो जिसके द्वारा हम जल्द से जल्द इस राज्य के उत्तराधिकारियों को प्राप्त कर सकें। बिना राजा के राज्य अनाथ हो जाता है और फिर नष्ट हो जाता है, इसीलिए कुछ ऐसा उपाय करो जिससे ये जल्द से जल्द गर्भ धारण कर सके। नवजात राजकुमारों के पालन पोषण का दायित्व भीष्म के ऊपर होगा। व्यास जी ने कहा, माता, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं समय का नियम किए बिना आपको जल्द से जल्द अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करता हूँ। आवश्यक है कि वो दोनों देवियाँ मेरे असुंदर रूप को देखकर ना डरें। यदि अंबिका मेरी गंध, रूप, साधु वेश और शरीर को सहन कर पाए तो वह आज ही एक पुत्र को अपने गर्भ में प्राप्त कर सकती है। आप अंबिका से कहना कि वह स्नान आदि करके शुद्ध होकर मेरी प्रतीक्षा करे, मैं आधी रात को आऊंगा। ऐसा कहकर व्यास जी अंतर्धान हो गए। सत्यवती ने अपनी पुत्र वधु के पास जाकर धर्म और अर्थ से भरे हुए कल्याणकारी शब्द कहे। सत्यवती ने अपनी पुत्र वधु से कहा, अंबिका, इस कुल को बचाने के लिए तुम देवताओं के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दो जो इस राज्य का पालन पोषण कर सके। सत्यवती ने अंबिका को समझा बुझा कर बड़ी जद्दोजहद कर आखिरकार उसे मना ही लिया। रात को अंबिका साज श्रृंगार कर व्यास जी का इंतजार करने लगी। उसे लगा कि शायद भीष्म उसके कक्ष में आने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल वहां महर्षि वेद व्यास शरीर पर घी चुपड़े हुए, यानी के शरीर पर घी लगाए हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यास देव श्याम रंग के थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, भूरे रंग की दाढ़ी मूछ थी। एक आम इंसान का उनको देखकर भयभीत होना काफी आम था। व्यास देव को देखकर अंबिका घबरा गई और उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। माता के कहे अनुसार व्यास देव ने अंबिका के साथ समागम किया, लेकिन अंबिका ने डर के मारे एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा। जब व्यास जी महल से बाहर आए तो माता सत्यवती ने उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से किसी गुणवान पुत्र का जन्म होगा? व्यास देव ने उत्तर देते हुए कहा, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलशाली, सौभाग्यशाली, महान पराक्रमी होगा। उसके स्वयं 100 पुत्र होंगे, लेकिन वह बालक नेत्रहीन होगा। सत्यवती ने कहा कि कुरुवंश का राजा अंधा हो, यह संभव नहीं। सत्यवती ने कहा, पुत्र, तुम एक और पुत्र की उत्पत्ति करो। व्यासदेव ने तथास्तु कहकर हामी भरी और वहां से चले गए। प्रसव का समय आने पर अंबिका ने एक अंधे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। इसके बाद सत्यवती ने अंबालिका को समझा बुझाकर गर्भ धारण करने के लिए तैयार किया। फिर नियोग की विधि से व्यासदेव ने अंबालिका के साथ समागम किया। महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन हो गई और सफेद पड़ गई। जिसके बाद व्यासदेव ने अंबालिका से कहा, अंबालिका, तुम मुझे देखकर पांडु वर्ण की हो गई थी, इसीलिए तुम्हारा पुत्र पांडु रंग का होगा। और माता के पूछने पर भी व्यासदेव ने उन्हें यही उत्तर दिया। माता सत्यवती ने व्यासदेव जी से एक और पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा। कुछ महीनों बाद अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया। उनका रंग पांडु वर्ण का होने के कारण उस बालक का नाम पांडु रखा गया। सत्यवती ने अंबिका को दोबारा नियोग के लिए कहा। व्यासदेव का रूप याद करके अंबिका डर गई और उसने अपने स्थान पर अपनी दासी को बैठा दिया। महर्षि वेदव्यास के आने पर उस दासी ने उनका आदर सत्कार किया और आज्ञा लेकर ऋषि के पास गई। शयन के बाद महर्षि ने उस दासी से कहा, अब तुम दासी नहीं रहोगी, तुम्हारे गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। यह बालक धर्मात्मा होगा और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। आगे चलकर उस दासी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विदुर रखा गया। एक ही पिता के पुत्र होने के कारण वे तीनों ही भाई थे। असल में महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर के रूप में जन्मे थे। जाते समय व्यासदेव जी ने माता सत्यवती को भी अंबिका के द्वारा अपने स्थान पर दासी को भेजने का भेद बता दिया और अंतर्धान हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर महात्मा मांडव्य ने धर्मराज को क्या शाप दिया और क्यों दिया? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगी महर्षि मांडव्य की कथा। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।